अध्याय 26 प्रभु भोज। प्रभु के घर के प्रतिरूपक या सूचक चिन्ह अत्यंत सादे और सरलता से समझ में आ जाने योग्य है और उनके द्वारा प्रदर्शित सत्य हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। यीशु दो युगों और उनके दो महान पर्वों के बीच अवस्थांतर बिंदु पर खड़ा था। वो जो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना था, पाप बलि के रूप में अपने को चढ़ाने को था। इस प्रकार वो लाक्षणिक तथा रीति रिवाज की पद्धति को, जो 4000 वर्ष से उसकी मृत्यु की ओर संकेत कर रही थी, समाप्त करने वाला था। अपने शिष्यों के साथ फसह खाने के बाद उसने उसके स्थान में वह विधि स्थापित की जो उसके महान बलिदान की स्मृति ठहरने वाली थी। यहूदियों का राष्ट्रीय पर्व सदा के लिए समाप्त होने को था। वो विधि या संस्कार जिसे मसीह ने स्थापित किया, उसके अनुयायियों द्वारा हर देश में अथवा हर युग में मनाया जाने वाला था। फसह निस्तार पर्व इसराइलियों के मिस्र की गुलामी से छुटकारे की यादगार के रूप में नियुक्त किया गया था। परमेश्वर ने आदेश दिया था कि प्रतिवर्ष जब बच्चे इस संस्कार का अर्थ पूछे तो इतिहास दोहराया जावे। इस प्रकार वो अद्भुत उद्धार या छुटकारा सबके मन में ताजा रखा जाता। प्रभु भोज की विधि इस भारी छुटकारे की स्मृति में दी गई थी जो मसीह की मृत्यु के फलस्वरूप हुआ था। जब तक वो दूसरी बार सामर्थ और महिमा में न आवे, ये संस्कार मनाया जाएगा। इस साधन के द्वारा उसका महान कार्य हमारे मनों में ताजा रखा जाना है। प्रभु भोज के समय मसीह का नमूना किसी के बहिष्कार की अनुमति नहीं देता। ये सच है कि खुला पाप अपराधी को बहिष्कार करेगा। इसकी शिक्षा पवित्र आत्मा सफाई से देते हैं। पहला कुरंथियों 5:11। परंतु इससे परे किसी को अपना निर्णय न करना चाहिए। परमेश्वर ने यह बात मनुष्य के हाथ में नहीं छोड़ी है कि बतलाए कि किस किस को ऐसे अवसरों पर हाजिर होना चाहिए, क्योंकि कौन है जो हृदय को पढ़ सकता है? कौन गेहूं और जंगली बीजों में अंतर पहचान सकता है? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और उस कटोरे में से पिए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पहला कुरंथियों 11:28-29। किसी को प्रभु भोज में सम्मिलित होने से अपने को अयोग्य व्यक्तियों के उपस्थित होने के कारण पृथक नहीं करना चाहिए। प्रत्येक शिष्य को खुले तौर पर भाग लेने का नियंत्रण है। इस प्रकार वो अपनी साक्षी देवे कि उसने मसीह को अपना व्यक्तिगत त्राणकर्ता मान लिया है। अपने शिष्यों के संग रोटी और दाखरस में भाग लेने से मसीह ने स्वयं उनके त्राणकर्ता होने की प्रतिज्ञा दी है। उसने उनको नई वाचा दी है जिसके द्वारा सब जो उसको ग्रहण करते हैं परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और मसीह के साथ मीरास के सहभागी। इस वाचा द्वारा स्वर्ग की समस्त आशीषें, जिन्हें परमेश्वर इस जीवन में और आने वाले जीवन में देना चाहता है, उनकी ही होती हैं। इस संधिपत्र को मसीह के लोहू से पक्का होना था और प्रभु भोज की रस्म को अदा करने से शिष्यों के सन्मुख उस असीम बलिदान को सर्वदा रखना था जो व्यक्तिगत रूप में पतित मानव जाति के अंग होने के नाते सबके लिए चढ़ाया गया था। सेवकों का सेवक। जब शिष्यों ने भोजन के कमरे में प्रवेश किया तो उनके हृदय में रोषपूर्ण भावनाएं भरी हुई थीं। यहूदा मसीह के बाईं ओर सटकर बैठा हुआ था और यूहन्ना उसके दाहिनी ओर। सबसे ऊंची जगह लेने को यहूदा तुला बैठा था और वो जगह मसीह के ठीक बगल में ही समझी जाती थी, परंतु यहूदा विश्वासघाती था। मतभेद का एक और कारण उठ खड़ा हो गया। किसी भी भोज के समय यह रिवाज होता था कि सेवक मेहमानों का पैर धोया करता था और इस अवसर पर भी इस संस्कार की तैयारियां की गई थीं। पैर धोने के लिए घड़ा, चिलमची और तौलिया सभी कुछ तैयार थे, परंतु सेवक नहीं था। अब शिष्यों का कर्तव्य था कि इस कार्य को पूरा करें, परंतु प्रत्येक शिष्य ने अपनी मान हानि समझकर सेवक का कार्य न करने की मन में ठान ली। उन्होंने बड़ी उदासीनता प्रकट की, मानो उनको करने को कुछ था ही नहीं। अपनी खामोशी से उन्होंने नम्र होने से इनकारी दिखलाई। शिष्यों ने एक दूसरे की सेवा करने का कोई कदम नहीं उठाया। कुछ समय तक यीशु प्रतीक्षा करते रहे कि देखें लोग क्या करते हैं। तब वह ईश्वरीय गुरु मेज से उठा, अपने अंगरखे को उतारकर, जिससे चलने फिरने में रुकावट हो सकती थी, उसने तौलिए से अपनी कमर बांधी। बड़े आश्चर्यजनक रुचि से शिष्यगण देखते रहे और मौन होकर प्रतीक्षा करते रहे कि देखें कि आगे क्या होता है। तब पात्र में पानी डालकर वह होकर प्रतीक्षा करते रहे कि देखें कि आगे क्या होता है। तब पात्र में पानी डालकर वह शिष्यों का पैर धोने लगा और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा। इस कार्य से शिष्यों की आंखें खुले गईं, उनका हृदय अत्यंत लज्जा और शर्म से भर गया। वे मौन डांट का अर्थ समझ गए और अपने को एक नए प्रकाश में पाया। इस प्रकार से यीशु ने अपने शिष्यों के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। उसका हृदय शिष्यों की स्वार्थ भावना को देखकर दुख से भर गया, परंतु उसने उनकी कठिनाइयों के संबंध में उनसे किसी प्रकार वाद विवाद नहीं किया, प्रत्युत उसने ऐसा नमूना उनको दिया जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। शिष्यों के लिए उसका प्रेम कभी छिन्न भिन्न अथवा कम नहीं हो सकता था। वह जानता था कि पिता ने सारी वस्तुएं उसके हाथ में सौंप दी हैं और कि वह पिता की ओर से आया और पिता ही के पास जाने वाला था। अपने ईश्वरत्व का पूर्ण ज्ञान था, परंतु उसने अपना राजस्वी मुकुट और शाही वस्त्र उतारकर सेवक का रूप धारण किया। उसके सांसारिक जीवन का अंतिम कार्य यह था कि सेवक की भांति कमर बांधकर उसने सेवक का काम किया। मसीह अपने शिष्यों को यह समझाना चाहता था कि यद्यपि उसने उनके पैर धोए थे, फिर भी उससे उसकी इज्जत में कोई अंतर नहीं आ गया था। तुम मुझे हे गुरु और हे प्रभु पुकारते हो और तुम अच्छा कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इतना श्रेष्ठ होते हुए उसने इस संस्कार को महत्व देकर अनुग्रह से आभूषित किया। यीशु के समान इतना महान कोई नहीं था, फिर उसने ऐसे तुच्छ कार्य करने को अपने को झुका दिया। यीशु ने विनम्रता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया ताकि उसके शिष्य को वह किसी मनुष्य के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता था। वह इसको इतना महत्वपूर्ण तथा गंभीर समझता था कि उसने जो परमेश्वर के बराबर था स्वयं शिष्यों के लिए सेवक का कार्य किया। उस समय जब वे सर्वोच्च स्थान के लिए होड़ लगा रहे थे, वह जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, जिसको सेवा करना महिमा के दूत अपना गौरव समझते हैं, वह स्वयं उनके पैर धोने को झुक गया जो उसको प्रभु कहते थे। उसने विश्वासघात के भी पैर धोए। शिष्यों के पैर धोने के बाद उसने कहा, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यूहन्ना 13:15। इन शब्दों के द्वारा यीशु ने केवल अतिथि सत्कार के अभ्यास डालने की आज्ञा ही नहीं, बल्कि इन शब्दों में मेहमानों के पैरों में लगी हुई यात्रा की धूल धोने से कहीं अधिक गंभीर भाव व्यक्त किया है। मसीह यहां पर एक धार्मिक संस्कार का समारंभ कर रहा था। हमारे प्रभु के इस कार्य द्वारा यह लज्जित विधि एक पवित्र संस्कार बन गया। शिष्यों द्वारा इसको मनाया जाता था ताकि वे सदैव नम्रता और सेवा का यह पाठ याद रखें, तैयारी का संस्कार। मसीह ने इस विधि को प्रभु भोज के संस्कार के संबंध में तैयारी के लिए नियुक्त किया। जब तक पद के लिए घमंड, झगड़े तथा मतभेद बने रहेंगे, तब तक हमारा हृदय मसीह की संगति में प्रवेश नहीं पा सकता। हम उसकी देह और लोहू के प्रभु भोज में शरीक होने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए यीशु ने अपनी दीनता के यादगार के पहले मानने की नियुक्त किया। जब वे संस्कार के लिए आते हैं तो उन्हें जीवन तथा महिमा के प्रभु के वचनों को याद करना चाहिए। क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यूहन्ना 13:12-17। मनुष्य में अपने को अपने भाई से अधिक बड़ा व्यक्त करने की अपनी स्वार्थपरता के लिए काम करने की और उच्चतम स्थान प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जो प्रायः आत्मा को तीखे एवं दोषपूर्ण वातावरण में डाल देती है। प्रभु भोज से पहले आयोजित होने वाली विधि द्वारा हर प्रकार के मिथ्या विचार दूर किए जाने चाहिए। मनुष्य को अपनी स्वार्थपरता से निकलना चाहिए और स्वाभिमान की भावना से अलग होकर हृदय की नम्रता की ओर झुक जाना चाहिए, जिससे वह अपने भाई की सेवा कर सके। इस अवसर पर स्वर्गीय पवित्र दूत उपस्थित होता है, जिससे इस अवसर पर हृदय की छानबीन करने, पाप की ओर कायल होने और पापों की क्षमा का धन्य आश्वासन दिलाने का होता है। मसीही अपने अनुग्रह की भरपूरी में स्वार्थपूर्ण विचारधारा को बदलने के लिए वहां उपस्थित है। पवित्र आत्मा उनकी भावनाओं को, जो प्रभु के आदर्श का अनुकरण करना चाहते हैं, सजीव करती हैं। जब त्राणकर्ता की दीनता स्मरण की जाती है, तो एक विचार से दूसरे विचार पर पहुंचते हैं और स्मृतियों की एक जंजीर तैयार हो जाती है, परमेश्वर के महान उपकार की और सांसारिक मित्रों को प्रेम व कृपा दृष्टि की स्मृतियां। जब कभी यह संस्कार उचित रीति से मनाया जाता है, तो परमेश्वर की संतान एक दूसरे को आशीर्वाद देने तथा मदद देने के हितार्थ पवित्र बंधन में जोड़े जाते हैं। वे वाचा बांधते हैं कि उनकी जिंदगी निस्वार्थ सेवा में व्यतीत की जाएगी, और यह एक दूसरे के लिए ही नहीं, उनके परिश्रम का क्षेत्र इतना ही विस्तीर्ण था जितना उनके स्वामी का था। संसार ऐसे लोगों से भरा है जो हमारी सेवा के जरूरतमंद है। हर कहीं निर्धन, लाचार और अज्ञान लोग पाए जाते हैं। जो लोग मसीह के साथ उपरौठी कोठरी में बातचीत करते थे, वे उसी तरह सेवा कार्य में आगे बढ़ेंगे जिस तरह उसने किया था। यीशु, जिसकी सबने सेवा की, सबका सेवक बनकर आया। चूंकि उसने सबकी सेवा की, इसलिए उसको सर्वसाधारण द्वारा सेवा तथा आदर किया जाएगा। जो लोग उसके ईश्वरीय गुणों में भाग लेंगे और उद्धार पाई आत्माओं की खुशी में उसके साथ सम्मिलित होंगे, उन्हें उसकी परस्वार्थ सेवा के नमूने को अनुकरण करना चाहिए। मसीह के द्वितीय आगमन की स्मृति। जब वे सबके चारों ओर इकट्ठे थे, तब उसने शोकातुर शब्दों में कहा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, तब तक मैं दाखरस अब से कभी न पीऊंगा। लूका 22 आयत 15 से 19। परंतु प्रभु भोज का संस्कार शोक मनाने का अवसर नहीं समझ जाने को था। इस अभिप्राय से यह नहीं नियुक्त किया गया था। जब प्रभु के शिष्य भोज के चारों तरफ जमा होते हैं, तो उन्हें अपनी कमजोरियों को याद कर शोकित न होना चाहिए। उन्हें अपने पिछले धार्मिक अनुभवों पर सोचते नहीं रहना चाहिए, चाहे वे अनुभव उत्थान करने वाले हों या नीचे गिरने वाले हों। उन्हें अपने और भाइयों के बीच के मतभेदों को याद नहीं करना चाहिए। इससे पहले की विधि के अंतर्गत यह सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। आत्मजांच, पाप अंगीकार, मतभेद के प्रति मेल मिलाप, यह सब कुछ किया जा चुका है। अब तो मसीह के दर्शन व मुलाकात के लिए आए हैं। अब वे क्रूस की परछाई में खड़े नहीं होते, बल्कि उसके रक्षक प्रकाश में उन्हें आत्मा को धार्मिकता के सूर्य की किरणों के समक्ष खोल देना है। मसीह के अत्यंत पवित्र लोहू द्वारा हृदय की शुद्धि होकर उसकी उपस्थिति का पूर्ण बोध प्राप्त कर वे अदृश्य रूप में उसके ये वचन सुनते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और डरे। यूहन्ना 14 आयत 27। जब हम रोटी और दाखरस को लेते हैं, जो लाक्षणिक रूप में मसीह के टूटे हुए बदन और बहाए हुए लोहू के प्रतीक हैं, तो हम भी ध्यान में उपरौठी कोठरी में प्रभु भोज के दृश्यों में शरीक होते प्रतीत होते हैं। हम भी उस बाग में से गुजरते प्रतीत हो रहे हैं, जो जगत के पाप उठाने हारे के दुखों से शुद्ध हो गया था। हम उस संघर्ष के साक्षी ठहरते हैं, जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप प्राप्त होता है। मसीह हमारे मध्य क्रूस पर चढ़ाया हुआ जैसा दिखाता है, क्रूस पर चढ़े त्राणकर्ता पर नजर करते हुए हम स्वर्ग के महाराजा धीराज द्वारा चढ़ाए गए बलिदान का अर्थ एवं महत्व को और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। त्राण की योजना हमारे समक्ष प्रज्वलित होती है। कलवरी का ख्याल हमारे दिलों में जीवित तथा पवित्र आवेग जागृत कर देता है। परमेश्वर के लिए और मेमने के लिए हमारे हृदयों और होठों पर प्रशंसा के शब्द होंगे, क्योंकि आत्म उपासना उस आत्मा की भूमि में नहीं पनप सकती जो कलवरी के दृश्यों को सदा स्मरण में ताजा रखता है। जब विश्वास हमारे प्रभु के महान बलिदान पर गौर करता है, उस समय आत्मा मसीह के आत्मिक जीवन को ग्रहण करता है। वह प्राणी प्रत्येक प्रभुबोध से आत्मिक बल प्राप्त करेगा। इस विधि द्वारा एक जीवित संसर्ग पैदा होता है, जिसके द्वारा विश्वासी मसीह से और पिता से संगठित हो जाता है। विशेष रूप में इससे परमेश्वर पर निर्भर इंसान और परमेश्वर के बीच एक संपर्क कायम हो जाता है। प्रभु भोज की विधि मसीह के द्वितीय आगमन की ओर संकेत करता है। शिष्यों के मनों में इस आशा को स्पष्ट रखने के लिए इसकी रचना की गई थी। जब कभी वे इसकी मृत्यु की यादगार मानने के हेतु इकट्ठा हुए, उनको स्मरण कराया जाता था कि उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लोहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। मत्ती 26:27-29। अपने क्लेशों के मध्य इनको अपने स्वामी के आगमन की आशा में शांति प्राप्त हुई। उनके निकट यह विचार अत्यंत कीमती था, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। 1 कुरिन्थियों 11:26। ये बातें वे हैं जिन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। यीशु का प्रेम उसकी परवश करने वाली शक्ति के साथ हमारी स्मृति में ताजा रहनी चाहिए। मसीह ने इस विधि का स्थापन इसलिए किया कि इसके द्वारा हमारी भावनाओं का परमेश्वर के प्यार का प्रचार हो। हमारी आत्माओं और परमेश्वर के बीच कोई संयोग नहीं हो सकता सिवाय मसीह के। भाई भाई के बीच मेल व प्रेम यीशु के प्रेम द्वारा पक्का और अनंत होना चाहिए। केवल मसीह की मृत्यु ही उसके प्यार को हमारे लिए गुणकारी बना सकती है। केवल उसकी मृत्यु द्वारा हम हर्ष के साथ उसके द्वितीय आगमन को देख सकते हैं। उसका बलिदान हमारी आशा का केंद्र है। इस पर हमको अपना विश्वास केंद्रित करना चाहिए।